पृष्ठ संख्या 176, जा रीति काव्य का प्रदेय। रीतियुगीन कविता का समय राजनीतिक दृष्टि से मुगल साम्राज्य की वैभवपूर्ण किंतु पतनोन्मुख परिस्थितियों का समय है। शाहजहां के शासनकाल में जिस परम वैभव के लक्षण दिख रहे थे, औरंगजेब तक आते आते उसका अधः पतन हो गया। समूचा देश छोटे छोटे राज्यों, राजाओं, युद्धों और युद्ध के विप्लवों से आक्रांत हो गया। केंद्रीय शासन सत्ता के निर्बल हो जाने से समाज की स्थिति भी दयनीय हो गई। नादिरशाह और अब्दाली के आक्रमणों ने रही सही स्थिति को भी धराशायी कर दिया। मुगल दरबार का वह वैभव जो इंद्र की सभा को भी मात देता था, अपने दुर्दिन पर आंसू बहाने के लिए विवश हो गया। इन्हीं परिवेशों में रची गई रीतिकाल की कविता, जो उस युग की मनोवृत्ति और सामाजिक परिवेश को काफी हद तक स्पष्ट कर सकती है। रीतियुगीन साहित्य को प्रायः दरबारी और सामंती कहकर खारिज कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, कभी-कभी उसे अलंकारिक और कठिन मानकर भी चलता कर दिया जाता है। कभी घोर श्रृंगारिकता, विलासिता और नायक नायिका तक सीमित रहने वाला कहकर उसकी उपेक्षा की जाती है, तो कभी उसे संस्कृत काव्य शास्त्र का पृष्ठपेषण मात्र करने वाला बताया जाता है। पृष्ठ संख्या 177। अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का मूल्यांकन करते हुए लिखा कि इन्वर्टेड कामा आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन या पर्यायलोचन शक्ति की अपेक्षा होती है, उसका विकास यहाँ नहीं हुआ। कवि लोग एक ही दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म की इतिश्री समझने लगे। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खंडन मंडन एवं नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन आदि कुछ भी ना हुआ। इन्वर्टेड कामा बंद। श्रृंगारिकता के संदर्भ में और आगे लिखा कि इन्वर्टेड कामा श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया था। इसका कारण जनता की रुचि थी, जिनके लिए कर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था। इन्वर्टेड कामा बंद। यहाँ पर शुक्ल जी के तर्कों से सहमत ना होना कठिन है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी अपने ग्रंथ रीति काव्य की भूमिका में भी कुछ इसी प्रकार रीतिकाल का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि इन्वर्टेड कामा हिंदी के रीति आचार्य निश्चय ही किसी नवीन सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके, किसी ऐसे व्यापक आधारभूत सिद्धांत का प्रतिपादन जो काव्य चिंतन को नवीन दिशा प्रदान करता, संपूर्ण रीतिकाल में संभव नहीं हुआ। इन कवियों ने काव्य के सूक्ष्म अवयवों के वर्णन में कहीं कहीं नवीनता का प्रदर्शन किया है, परंतु उन तथाकथित उद्भावनाओं का भी आधार स्रोत किसी न किसी संस्कृत ग्रंथ में मिल जाता है। इन्वर्टेड कामा बंद। बिहारी नामक ग्रंथ में रीतिकाल के तलस्पर्शी विद्वान आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी कुछ ऐसा ही कहा। उन्होंने लिखा कि इन्वर्टेड कामा रीति का व्यवहार अधिक होने का दुष्परिणाम जो होना चाहिए था वही हुआ। कवियों ने अपनी काव्य दृष्टि खो दी, प्रकृति का अपनी दृष्टि से निरीक्षण करना ये छोड़ बैठे। कुछ कवियों ने परंपरा का तिरस्कार करके वसंत में मयूर का नृत्य अवश्य दिखाया और वर्षा में कोकिल कंठ अवश्य खोला, पर इससे आगे वह कुछ भी नहीं कर सके। इन्वर्टेड कामा बंद। यहाँ पर स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि विद्वानों के उपर्युक्त विचार विशेष रूप से रीतिबद्ध कविता पर लागू होते हैं, रीति सिद्ध या रीति मुक्त पर नहीं, क्योंकि आचार्य शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा डॉक्टर नगेंद्र आदि सभी ने बिहारी और रीति सिद्ध तथा घनानंद जैसे रीति मुक्त कवियों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। शुक्ल जी ने केशव को हृदयहीन और कठिन अवश्य कहा, पर रामचंद्रिका के संवादों की मौलिकता की प्रशंसा भी की। भूषण की विरोक्तियों और पद्माकर की काव्योक्तियों की यथेष्ट सराहना की। वास्तविकता यही है कि रीति आचार्य, कवि भरत, भामह, दंडी, राजशेखर, आनंदवर्धन या कुंतक मम्मट की तरह शास्त्र सिद्धांतों के प्रतिपादक नहीं थे। कवि शिक्षा के लिए उन्होंने उसे सरल बनाकर अपने युग की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति की। किंतु शास्त्र कवि भी केवल शास्त्र नहीं लिखता। पृष्ठ संख्या 178 रहा, उसमें बहुतों ने काव्य रचना भी की। इनके योगदान का स्मरण कराते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा कि इन्वर्टेड कामा, हिंदी के रीति आचार्यों का प्रमुख योगदान यह है कि उन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा को हिंदी में सरस रूप में अवतरित किया। इस प्रकार हिंदी काव्य को शास्त्र चिंतन की प्रौढ़ी प्राप्त हुई और शास्त्रीय विचार सरस रूप में प्रस्तुत हुए। भारतीय भाषाओं में हिंदी को छोड़ अन्यत्र कहीं भी इसकी प्रवृत्ति नहीं मिलती। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा कि विचार करने पर रीति ग्रंथ प्रणेता अधिकतर पूर्णतया आचार्य नहीं सिद्ध होते। इन्होंने रीति का पल्ला सहारे के लिए पकड़ा, कहना ये चाहते थे श्रृंगार ही। किसी ने अलंकारों की माला बनाई, किसी ने पिंगल का प्रस्तर किया, किसी ने रसा भाव की धारा बहाई और किसी ने सीधे नायिका, भेद, नख, शिख, षड ऋतु, बारह मासा आदि के बने बनाए सांचे ले लिए। सच पूछिए तो इन्हें रीति शास्त्र का विवेचन करने के लिए बुद्धि दौड़ाने की आवश्यकता ही कहाँ थी। संस्कृत में शास्त्र पक्ष की सारी सामग्री जुटी जुटाई रखी थी, उसे उठाकर हिंदी पद्यों में ढाल भर देना था। यदि रीति का विवेचन इनका साध्य होता तो ये संस्कृत के आचार्यों की भांति प्रत्येक विषय के विमर्श में लगते, दोहों में लक्षण देकर काम चलता ना करते। और फिर उदार हृदय से उनके प्रदेय के संदर्भ में लिखा कि उसमें ब्रैकेट में रीति काव्य में कूड़ा करकट या केवल अशिष्ट या अश्लील वर्णन नहीं है, उसमें श्रृंगार की प्रसूत परिणाम में अच्छी अच्छी उक्तियां भी संचित हैं, जिसकी संस्कृत क्या किसी भी साहित्य में उपलब्धि नहीं हो सकती। इसे उसकी कड़ी आलोचना करने वाले महानुभावों ने भी स्वीकार किया है। वास्तव में वाक्यम रसात्मकम काव्यम या रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रस का रमणीय अर्थ किसी भी कसौटी पर कसा जाए, रीतिकाल की कविता 100% खरी उतरती है। रीतिकाल की कविता का सबसे कमजोर पक्ष उसका लोक पक्ष है, जिसकी ओर इन कवियों का ध्यान गया ही नहीं। इसीलिए इनमें जीवन मूल्यों की वह उदात्तता नहीं है जो भक्तिकाल की कविता में है, किंतु घोर पराभव के उस युग में भी इन कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से जीवन की सरसता कायम रखी और अपनी तरह से समाज का उपकार किया। यद्यपि कि इनकी कविता में जीवन के उदात्त और नैतिक मूल्य बहुत ही स्वल्प हैं, फिर भी अपने युग की आत्मघाती निराशा को अक्षुण्ण करने में इन कवियों ने अपना यथाशक्य योगदान दिया। जीवन जगत, ब्रह्म माया, भक्ति और रहस्य के आध्यात्मिक जंजालों से कविता को निकालकर इन कवियों ने विशुद्ध कविता के धरातल पर पहली बार कविता की प्रतिष्ठा की। यह भी सही है कि प्रेम के नाना अर्थों की व्यंजना करने वाली ये कविताएं जन का मनोरंजन तो करती हैं, किंतु समाज का कोई निर्माण नहीं करती। इस युग में स्त्री मात्र नायिका, दूती, पृष्ठ संख्या 179, अभिसारिका अथवा विलास वस्तु मात्र है। ऐसे समाज की कल्पना से मन भयभीत हो जाता है। अलंकार, उहा और उक्ति, चमत्कार द्वारा कविता को सौंदर्य के नाना प्रसाधनों से सजाना इनका अभीष्ट था। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे रुग्ण मनोवृत्ति का काव्य कहा है, क्योंकि रीति कविता में विलास, मदिरा और सुरा सुंदरी में सब कुछ उलट जाता है। भक्ति रस ना जाने कहाँ पराभूत हो जाता है। किंतु उपर्युक्त सभी सच्चाइयों के बावजूद यही मानना पड़ेगा कि रीतिकाल की कविता का प्रदेय कम महत्वपूर्ण नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर किशोरीलाल तथा डॉक्टर विजयपाल सिंह जैसे रीतिकाल के अनेक सुधी अध्येताओं ने उदारता पूर्वक उसके पुनर्मूल्यांकन की बात कही और यह सिद्ध किया है कि रीतिकाल की कविता अपनी उत्कृष्ट सर्जना की अनुगूंज में समूची हिंदी कविता में अद्वितीय है। इसी युग में भूषण जैसे कवियों का साहसिक घननाद भी सुनाई पड़ता है तो घनानंद जैसे रीत स्वच्छंद कवियों के प्रेम का उन्मुक्त भाव व्यापार भी। इसी युग में गिरधर कविराय जैसे कवियों की नीति की कुंडलियां भी गूंजती हैं तो रीति सिद्ध कवि बिहारी की श्रेष्ठ कविता सभी को अपनी ओर आकृष्ट करती है। इस युग में यदि रति क्रीड़ा के चित्र हैं तो गृहस्थ जीवन के चित्रणों की भी कमी नहीं है। गोपन भावों में जहाँ नितांत ही वैयक्तिक चित्र हैं, वहीं फाग, झूला, होली आदि उत्सवों के बीच बीच लोक जीवन के चित्र भी झांक झांक जाते हैं। निष्कर्षतः डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का अपना विशिष्ट स्थान है। सैद्धांतिक दृष्टि से भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा को हिंदी में अवतरित करते हुए विवेचन एवं प्रयोग दोनों के द्वारा रसवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा कर और उधर सर्जना के क्षेत्र में कविता के कला रूप की सिद्धि करते हुए भारतीय मुक्तक परंपरा का अपूर्व विकास कर ब्रजभाषा के कला प्रसाधनों के सम्यक परिष्कार प्रसाधन द्वारा रीति कवियों ने हिंदी काव्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान किया है। एकांत वैशिष्ट्य की दृष्टि से भारतीय वाङ्मय में ही नहीं संपूर्ण विश्व के वाङ्मय में आलोचना और सर्जना के संयोग से निर्मित यह काव्य विधा अपना उदाहरण आप ही है। किसी भी भाषा में इस प्रकार का काव्य इतने प्रचुर परिणाम में नहीं रचा गया। अलंकार, व्यंजना और वक्रोक्ति द्वारा अभिव्यंजना का जो चमत्कार इनकी काव्य कला में विद्यमान है, वह हिंदी कविता में भूतो न भविष्यति की भांति अपना महत्व रखती है। हिंदी की रीति कविता के समानांतर ही उसी काल में उर्दू कविता भी आतिश, अनिस, मिर्जा दवीर, नज़ीर अकबरावादी तथा मोमिन, जौक आदि पृष्ठ संख्या 180 शायरों से होते हुए गालिब तक शानदार सफर तय कर चुकी थी। हिंदुस्तानी भाषा के एक संस्कृत निष्ठ रूप से जहाँ हिंदी का जन्म हुआ, वहीं उसके दूसरे अरबी फारसी निष्ठ रूप से उर्दू का। अतः दोनों में साहित्य की गंगा यमुना बराबर बहती रही। कभी कभी इनका संगम भी हुआ। गालिब इस समय के ही नहीं समस्त उर्दू कविता के सबसे बड़े शायर के रूप में ख्यात हैं। अतः उनकी कविता के माध्यम से उस समय के उर्दू काव्य साहित्य के मन मिजाज को टटोलते हुए उसकी काव्यात्मक ऊंचाई को देखना परखना भी आवश्यक हो जाता है। अस्तु हिंदी कविता के साथ ही साथ विद्यार्थियों को उस समय की उर्दू कविता की समझ से परिचित कराने के लिए महान शायर गालिब की कुछ गज़लों को भी पाठ्यांश के रूप में सम्मिलित किया गया है, जिसका उद्देश्य साहित्य के बहाने इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को आत्मसात कराना है। राकेश कुमार द्विवेदी।